نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. اللہ تبارک و تعالی ان حفاظ کرام کو قبول فرمائے، ساری عمر اس کو پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآنی احکام پر عمل کی توفیق دے، دن رات قرآن کی اشاعت اور امت کو پہنچانے کی خدمت میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن ایک عظیم دولت ہے، صرف حافظ کے لیے نہیں، پڑھنے والے کے لیے نہیں، بلکہ عام انسانیت کے لیے، جو مانتے ہیں ان کے لیے بھی، جو نہیں مانتے ان کے لیے بھی. یہ قرآن کریم ہی ہے کہ جب تک یہ اللہ کا کلام روئے زمین پر باقی رہے گا، اس وقت تک یہ نقشہ باقی رہے گا. جب یہ اللہ کا کلام اٹھا لیا جائے گا، تو اس کے بعد نہ زمین رہے گی، نہ آسمان رہے گا، نہ کوئی بشر رہے گا، نہ اور کوئی مخلوق باقی رہے گی، سب کو فنا کر دیا جائے گا. تو اس کائنات کا بقا ہی اس قرآن کریم کی وجہ سے ہے، اور اسی لیے شخصی طور پر جو اس کو عمل میں لاتے ہیں، عمل کرتے ہیں اور اس کو اپناتے ہیں اور اس کے لیے ساری زندگی اپنی اس کے علوم کے پیچھے خرچ کرتے ہیں اور اس کے معانی کو سمجھ کر روتے رہتے ہیں، تو اللہ عز و جل ان کی برکت سے بھی قیامتیں روک دیتا ہے. آئی ہوئی قیامتیں ٹل جاتی ہیں جب یہ ہندوستان کی تقسیم ہوئی، پاکستان بنا، تو اس وقت جو فسادات پھیلے ہوئے تھے پورے ہندوستان کے کونے کونے میں، اور انسانیت کا خون کیا جا رہا تھا، اور اس وقت جو مظالم عام تھے اور ہجرت عام تھی، ایسی ہجرت بھی شاید اس کے بعد کم دیکھی گئی ہو کہ لکھا ہے کہ ملینوں کی تعداد میں حضرت مولانا اسد مدنی صاحب نور اللہ مرقدہ نے وہ حالات ایک دفعہ سنائے تھے. فرمانے لگے کہ وہ خواتین پردہ نشین کہ جنہوں نے اپنے گھر سے باہر قدم نہیں رکھا، ایک ہی محلے میں ایک گھر سے دوسرے گھر جانا ہوتا تھا تو انہیں ڈولیوں میں لے جایا جاتا تھا. ڈولیاں جیسے چارپائی پر جنازے کو لے جاتے ہیں، اس طرح کی ایک مستقل خوبصورت جس کو محفہ، جن کو دلہن کو لینے کے لیے جاتے تھے تو چھوٹی سی بیل گاڑی کی شکل کی وہ سواری ہوتی تھی جس کے اوپر छतरी की तरह से बारिश से और धूप से हिफाजत के लिए बांस वगैरह के ज़रिए उसे तैयार किया जाता था, उसके ऊपर कपड़े डाले जाते थे मुनक्कश रंगीन। तो उस तरह की वो डोलियाँ होती थी, तो उसमें शाही तरीक़े से एक घर से दूसरे घर एक महल्ले में जाने वाली ख़वातीन उनको सैकड़ों मील नंगे पैर नंगे सर न दुपट्टा न कोई सर्दी गर्मी से बचने का मामूली मुस्तमल लिबास, और वो कई कई लाख की तादाद में पंजाब से हिजरत करके मुसलमान अपनी जान बचा रहे थे और भाग रहे थे। उस वक्त लिखा है कि अगर क़यामत को अगर किसी ने रोका है और थामा है और मुसलमानों को बचाया है तो तीन बुज़ुर्ग, हज़रत शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद साहब मदनी कुद्दस सिर्रहू और हज़रत शाह अब्दुल क़ादिर साहब रायपुरी नबर अल्लाहु मरकदहू और हज़रत शेखुल हदीस कुतुबुल अख्ताब मौलाना मोहम्मद ज़करिया महाजिर मदनी कुद्दस सिर्रहू। और वो क़यामत भी आई कैसे? एक बदतमीज़ी की वजह से। बदतमीज़ियाँ तो बहुत होती रही। हज़रत शेखुल इस्लाम मदनी कुद्दस सिर्रहू के साथ कि वो ये चाहते थे कि शुरू इस्लाम से मुसलमान इस मुल्क में हैं, आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से इस्लाम इस मुल्क में है। एक मर्तबा पान खा रहे थे, हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब मद्दज़िल्लुहुमुल आली के साथ, अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत फरमाए, और उनसे उनके फ्यूज़ व बरकात को सारी दुनिया में आम फरमाए। यह हदीस पाक की 100 जिल्दों का सिलसिला जो आ रहा है, एक जिल्द तो उसकी आ गई, 100 जिल्दें आ रही हैं। कितनी अजीम खिदमत। तो हज़रत के साथ तवील ज़माना पहले एक दफ़े जब मुझे भी पान की आदत थी तो पान खाते हुए मैंने किस्सा सुनाया कि ये पान भी आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचा है। तो बड़ा ताज्जुब हुआ, पान? फिर मैंने उन्हें किस्सा सुनाया कि हमारे हिंदुस्तान में एक राजा भोज मशहूर थे, और उन्होंने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब कुरैश ने मौजज़ा तलब किया और उन्होंने इसरार किया कि ऐसा मौजज़ा कि जिसको दुनियावी सहर के ज़रिए नहीं किया जा सकता, वरना आप पर हम सहर का इल्ज़ाम जो पहले से लगा रहे हैं वही हम उस पर भी चस्पा कर देंगे। तो जो ऊपर वाली चीज़ें हैं, चाँद सूरज सितारे, तो वहाँ साहिर का कोई अब तक ऐसा साहिर दुनिया में नहीं आया कि जिसने ऊपर कोई अपनी तब्दीली करके दिखाई हो, तो वहाँ कोई तर आप तब्दीली दिखाएं, तब हम माने कि आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं। चुनाचे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको लेकर मक्के में पहाड़ पर तशरीफ़ ले गए और एक इशारा फरमाया चाँद को, जिसको हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानुतवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, कोई हमारे दिल पर भी इशारा हो जाए, बड़ा पापी है, इसमें से गंद निकलता ही नहीं, कि जिस तरह चाँद के दो टुकड़े हो गए तो कोई इशारा हमारे भी दिल के हो जा पार। जो कसीदा कासिमिया हज़रत शेख क़ुद्दुस रूह ने फ़ज़ाइल दुरूद शरीफ़ के आखिर में न हुए नगमा सरा किस तरह से बुलबुल ज़ार, के आई है नए सर से चमन चमन में बहार, हर एक को हसब लियाकत बहार देती है, किसी को गुल किसी को फूल। तो ये पूरी ये कसीदा हज़रत शेख क़ुद्दुस रूह हर शब जुमा को मुझसे सुनते रहते थे, और हिंदुस्तान में भी मदीना तैयबा में भी। मगर जैसा मैंने अर्ज़ किया कि ये जो कोई एक शख्स कोई हरकत करता है और सब नुकसान उठाते हैं, जैसे हज़रत शेख क़ुद्दुस रूह के साथ हरकत की गई कि आपके मस्जिद नूर में क़ियाम से तबलीग को नुकसान पहुंचता है, तो वो सन 73 अप्रैल में ये हरकत की गई रायमंड वालों की तरफ से, और कितना उन्होंने सोचा कि ओहो हमने किया मगर कुछ नहीं हुआ, मगर अल्लाह अज़्ज़ा वजल ढील देते हैं, मोहलत देते हैं। तो बाकी जब एक एक करके सब चले गए ज़ेर ज़मीन, एक शख्स एक आध शख्स बाकी रह गया, तब अब वो देख रहा है कि हमने जो करतूत किया था इससे दुनिया में क्या तबाही आई, इस काम पर कैसी तबाही हम लाए हैं। तो इसी तरह की एक हरकत, जैसा मैंने अर्ज़ किया कि हज़रत शेख उलिस्लाम मौलाना हुसैन अहमद साहब मदनी क़ुद्दुस सिर्रहू के साथ बेशुमार बदतमीज़ियाँ की गई, और हज़रत बर्दाश्त फरमाते रहे और अब जिसको हज़रत ने हक़ समझा था उसे बमांगे दुहुल हज़ारों लाखों के मजमे में स्टेज पर बयान फरमाते रहे कि जिस मुल्क जो मुल्क हमारा है 1500 बरस से हमारा है, तो उसमें से एक टुकड़े पर क्यों राज़ी होते हो, मुल्क को अपना समझो, अगर तुम जहाँ बनाओगे वहाँ भी दूसरे मज़हब के लोग होंगे, उनके साथ वही अहकाम होंगे जो साथ रहने में हैं, तो हाथ साथ क्यों नहीं रह सकते। लेकिन आपके साथ बदतमीज़ियाँ होती रही और क्या क्या इल्ज़ाम आप पर लगाए गए, और हज़रत ने इसे ज़ाहिरी नज़रों में जिसे हक़ समझा था आपको बता भी दिया गया मालिक की तरफ से कि ये मुल्क तकसीम होकर रहेगा। चुनाचे एक दफ़े अपनी इसी मुहिम के सिलसिले में हज़रत सफ़र पर थे, जगह जगह जलसे हो रहे थे, और हम लोग हज़रत शेख कुद्दुस रूह के साथ जब लाहौर पहुँचे, बल्कि ये हज़रत के विसाल के बाद के सफ़र का किस्सा है कि हज़रत के विसाल के बाद हज़रत सूफ़ी इकबाल साहब नव्वरल्लाहु मरकज़हु के साथ हम लाहौर पहुँचे, तो हज़रत सूफ़ी जी के साथ हम जामिया मदनिया हज़रत मौलाना हामिद मियाँ साहब की खिदमत में हाज़िर हुए, तो सूफ़ी जी मुझे दबी ज़ुबान से फरमाते हैं कि वो अरबाब बातिन के फ़ैसले वाला किस्सा हज़रत की ज़ुबानी हम सुन लें, दरख्वास्त करो। चुनाचे मैंने अर्ज़ किया हज़रत मौलाना हामिद मियाँ साहब नवरल्लाहु मरकज़हु से कि हज़रत वो आप हज़रत शेखुल इस्लाम मदनी कुद्दुस रूह की खिदमत में थे, और तो फिर वो शुरू हो गए, सारा किस्सा उन्होंने सुनाया। मुख्तसर ये है कि हम लोग मुस्तकिल तवील अरसे के लिए इस मुहिम पर हज़रत के साथ ही थे, हर जगह रात दिन बयानात हज़रत के होते थे, हज़रत मुल्क की तकसीम से जो नुकसानात हैं वो समझाने की कोशिश फरमा रहे थे कि ऐसा ना करो। तो एक फलां जगह हम ठहरे हुए थे फलां के मकान में, और रात जलसे से फारिग होकर हज़रत तशरीफ़ लाए और हज़रत लेट गए, हम खिदमत करते रहे, खिदमत से फारिग होकर हम कमरे से बाहर निकल आए। हमने सोचा कि हज़रत को नींद आ गई है, हज़रत आराम फरमा है, लेकिन घंटा भर नहीं गुज़रा होगा कि हज़रत हमारे दरवाज़े के सामने, दरवाज़े के दोनों फाटक के ऊपर हाथ रखकर हमने देखा कि हज़रत खड़े हैं। तो हमने अर्ज़ किया कि हज़रत क्या बात, तो हज़रत मुस्कुराए और फरमाने लगे कि अरबाब बातिन का ये फ़ैसला है कि मुल्क तकसीम होकर रहेगा। फरमाते हैं हमने पूछा हज़रत फिर अब चले चलें वापस देवबंद और अपने घरों पर लौट जाएं, क्या करें। फरमाया कि नहीं नहीं, हमने जिसे अपनी समझ के एतबार से हक जाना है उसको हम पहुंचाते रहेंगे, और अरबाब बातिन का जो कहते हैं ये दुनिया ज़ाहरी तौर पर जो चल रही है उसमें ऊपर नीचे जो कुछ होता है वो अल्लाह वालों की तरफ से होता है, उनके बहुत किस्से भी हैं। तो हज़रत ने फरमाया कि नहीं, वो तो हमारा मिशन तो उसी तरह जारी रहेगा, हम इसकी कोशिश करते रहेंगे। तो इसी में वहाँ पंजाब के एक स्टेशन पर हज़रत किसी सफ़र में हज़रत की ट्रेन पहुँची, बलवाइयों ने आप पर हमला किया, ट्रेन पर हमला किया, हज़रत को स्टेशन पर बाहर उतार लिया, हज़रत के साथ बदतमीज़ी की गई, सताया गया, नंगा नाच किया गया। तो हज़रत मौलाना शाह अब्दुल क़ादिर साहब रायपुरी नवरल्लाहु मरकज़हु इन तमाम वाक़यात की ख़बर रखते थे, तो एक दफ़े हज़रत शेखुल इस्लाम मदनी कुद्दुस रूह की खिदमत में हज़रत शाह अब्दुल क़ादिर साहब पहुँचे, और हज़रत ने जाकर अपना सर का रुमाल, पगड़ी और टोपी हज़रत के कदमों में रख दी। एक ऐसा ही किस्सा रायपुर में हुआ है कि ये बुज़ुर्गों के साथ जो बदतमीज़ियाँ की जाती हैं उन्हें मालिक से बहुत डरना चाहिए, बहुत डरना चाहिए। जो मालिक की तरफ से डील होती है, इस्तिदराज होता है, रस्सी को ढीला छोड़ दिया जाता है ताकि वो और आगे बढ़कर और ज़्यादा अजाब उठाएं, इसे अपनी कामयाबी और फतह नहीं समझना चाहिए। कि बड़े हज़रत रायपुरी शाह अब्दुर्रहीम साहब रायपुरी नबरल्लाहु मरकदहु ने अपनी तरफ से गिरामी नामा भेजा दारुलूम देवबंद के मोहतमीम साहब हज़रत हाफिज़ मोहम्मद अहमद साहब के नाम, और उनको तहरीर फरमाया कि आपसे एक ज़रूरी काम है, आप तशरीफ़ ले आए, मैं तो माजूर हूँ, मैं हाजिर नहीं हो सकता, वरना आना तो मुझे चाहिए था आपकी खिदमत में। तो जैसे ही रुका मिला कि फौरन हज़रत मोहतमीम साहब तशरीफ़ ले गए। जब पहुँचे तो उस वक्त हज़रत बाग रायपुर बाग में चहलकदमी फरमा रहे थे, वहाँ से तखलिए में कमरे में ले गए और हज़रत हाफिज़ अहमद साहब मोहतमीम साहब के पैर पकड़ लिए। तो हज़रत मोहतमीम साहब हाफिज़ मोहम्मद अहमद साहब फरमाते हैं, अर्ज़ करते हैं हज़रत शाह अब्दुर्रहीम साहब से कि हज़रत हज़रत आप ऐसा मेरे साथ कर रहे हैं, बराए मेहरबानी ऐसा ना कीजिए, मैं तो फरमाया नहीं, मैं मामूर हूँ अल्लाह की तरफ से। कहाँ हज़रत शाह अब्दुर्रहीम साहब और ये कहाँ हाफिज़ मोहम्मद अहमद साहब, वो तो एक मुस्तरशिद के दर्जे में, तालिब इल्म के दर्जे में। तो हज़रत ने जवाब में फरमाया कि मैं अल्लाह की तरफ से इस पर मामूर हूँ, अल्लाह ने मुझे हुक्म फरमाया है, इसलिए मैं ये आपके साथ आपके पैर पकड़ रहा हूँ। उसके बाद फिर बिठाया और हज़रत ने फरमाया कि देखिए, मैंने एक दरख्वास्त करने के लिए एक मारूज़ पेश करने के लिए आपको तकलीफ़ दी, यहाँ तक बुलाया, वो ये कि आप के साथ एक आपके ख़िलाफ़ एक तूफ़ान और फितना उठने वाला है। तो बस मैं सिर्फ इतना कहने के लिए मैंने आपको तकलीफ़ दी कि उस आप की तरफ से इस पर सब्र, ज़ब्त, हिल्म, तहम्मुल, बर्दाश्त ही का मुजाहरा होना चाहिए जितना हो सके। आज ही मुझे मदनी बुज़ुर्ग हज़रत मौलाना मोहम्मद अली साहब मनियार ने फ़ोन पर बताया, मैंने पूछा, मैंने तो फ़ोन किया था उन्हें कि हमारे पीर साहब हज़रत मौलाना तलहा साहब कैसे हैं, उनका क्या प्रोग्राम है, कब तक रहेंगे, तो उसमें वो हालात सुनाते रहे। इसी के दौरान पता नहीं किसके ज़ेहन में किस चीज़ के तहत उन्होंने हज़रत मौलाना साद साहब का ज़िक्र किया और फरमाने लगे कि मौलाना साद साहब से भी मुलाकात हुई थी और उनके ख़िलाफ़ जो फितना है उसके मुतालिक कुछ मैंने एक जुमला अभी कहा, तो फरमाने लगे हज़रत मौलाना साहब कि अच्छा, आप इन तमाम चीज़ों की ख़बर रखते हैं तो मेरे मुतालिक कोई एक जुमला आपको किसी की तरफ से पहुंचा? कि मैंने इन मुखालफत करने वालों या किसी के मुतालिक भी एक जुमला अपनी ज़ुबान से निकाला हो? तो फरमाने लगे कि नहीं, मैं इतना तवील अरसा हो गया, एक जुमला कोई आपकी तरफ गलत भी मंसूब नहीं कर सकता। तो ये है उनका सब्र व तहम्मुल। तो इसी की तालीम दी हज़रत शाह अब्दुलरहीम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने दारुल उलूम देवबंद के मोहतमीम साहब को कि आपके ख़िलाफ़ एक फितना उठने वाला है, बस आपकी तरफ से सब्र और ज़ब्त होना चाहिए और आप तहम्मुल से काम लें। तो सारी उम्र के लिए उनके लिए ये काफ़ी हो गया। खैर, तो मैं तो अर्ज़ कर रहा था हज़रत शेखुल इस्लाम मदनी क़ुदसी लोगों के साथ जो बदतमीज़ी की गई उसके मुतालिक हज़रत शाह अब्दुल क़ादिर साहब रायपुरी नबरल्ला मरकदव सफ़र करके देवबंद जाते हैं और अपनी पगड़ी और टोपी पैरों में रख देते हैं और अर्ज़ करते हैं कि हज़रत हिंदुस्तान के मुसलमानों को माफ़ कर दीजिए। यानी जो बदतमीज़ियाँ जगह जगह आपके साथ पेश आ रही है, अखबारात में क्या, जैसे आप आजकल मोबाइल के ज़रिए पैगाम, इस तरह खतूत के ज़रिए क्या क्या उस ज़माने में, तो फरमाया कि अर्ज़ किया कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को हज़रत मुआफ़ फरमा दीजिए, हज़रत खामोश रहे। दूसरी मरतबा ये जुमला दोहराया, हज़रत हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुआफ़ कर दीजिए, हज़रत खामोश रहे। जब तीसरी मरतबा ये जुमला अर्ज़ किया कि हज़रत हिंदुस्तान के मुसलमानों को माफ़ कर दीजिए, तो हज़रत ने फरमाया उफव्विद अम्री इलल्लाह, बस एक आयत पढ़ी, उफव्विद अम्री इलल्लाह, मेरा मामला मालिक के सुपुर्द करता हूँ। चुनांचे हज़रत शाह अब्दुल क़ादिर साहब ने चिल्ला कर अर्ज़ किया कि हज़रत मैंने देख लिया है कि अजाब आसमान से चल पड़ा है। तो वो अजाब जो मैं जिक्र कर रहा था कि लाखों की तादाद में हिजरत हो रही थी और लिखा है कि 153,000 बच्चियां ख़वातीन को अगवा कर लिया गया, गायब कर दिया गया, गैरों के कब्ज़े में चली गई। तो कितनी शहादत वाकई हुई होगी, पूरा इलाका खाली हो गया जिसमें हज़ारों मसाजिद, लाखों मदरसे, मकातिब और क्या क्या नहीं था पूरे मशरिकी पंजाब में। आज तक भी वहाँ किसी जगह कोई गुरुद्वारा बना हुआ है, किसी जगह मंदिर बना हुआ है, किसी जगह इस्तबल बना हुआ है, जानवर बांधे जा रहे हैं। और अभी तो माशाल्लाह हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान सानी वहाँ काम कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह जगह जगह वो दोबारा उन्हें हासिल किया जाता है, वो मसाजिद भी दोबारा। तो ये सब का सब जो हुआ इसी हरकत की वजह से, जो एक अल्लाह के बंदे के साथ जो कुछ बदतमीज़ी की गई, और किन के साथ की गई, कि जब हज़रत शेखुल इस्लाम मदनी क़ुद्दसी रूह का विसाल होता है और नदवतुल उलमा लखनऊ में जलसा होता है, उस जलसे में हज़रत मौलाना अली मियां साहब ने ताज़ियती तकरीर फरमाई, उसमें क़िस्सा बयान किया कि मैं एक मरतबा हज़रत फ़लां जगह मुक़ीम थे, रात के वक्त वहाँ क़ियाम था, तो मैं तहज्जुद के वक्त हज़रत के कमरे के करीब पहुंचा कि कोई खिदमत हज़रत की अंजाम दे सकूं, तो मैंने अंदर से हज़रत के रोने गिड़गिड़ाने मालिक के सामने दुआ में हज़रत मशगूल हैं ये आवाज़ मैंने सुनी। हज़रत शेख नबरल्लाह मरकदहू फरमाया करते थे कि मैंने अपनी ज़िंदगी में रोने वाले दो बुज़ुर्गों को देखा जो सबसे ज़्यादा रोने वाले, एक फरमाते हैं कि मेरे वालिद साहब और दूसरे शेखुल इस्लाम हज़रत मदनी कुद्दस सिर्रहू कहते हैं पिछली रात को उठ कर के मालिक के सामने इस तरह रोते थे कि जिस तरह बच्चा मकतब में पिट रहा हो चिल्ला चिल्ला कर। और फरमाते हैं कि पंजाबी ज़ुबान में दोहे पढ़ते जाते और रोते जाते। तो हज़रत मौलाना अबुल हसन अली मियाँ साहब नदवी फरमाते हैं कि मैं जब पहुंचा तो हज़रत रो रहे थे तो मैं भी वहाँ सुनता रहा। फरमाते हैं कि जब रोते रोते जैसा हज़रत शेख उदी सिरू ने फरमाया कि दोहे पढ़ते थे और रोते थे अशार पढ़ते जाते थे पंजाबी के उर्दू के अरबी के और रोते जाते थे, जैसे भाईजान को जिक्र में जब वजद आता था तो मलिका जिक्र तू गोयम शुरू हो जाते, मलिका जिक्र तू गोयम कि तू पाकी खुदाई मन नरमम बजुजा रह किया तुआ रह नुमाई। आप क्या मरना जकरिया साहब के यहाँ उसकी टेप भी होती होगी कहीं पड़ी होगी उनकी, उन्होंने किसी ने भेजी भी थी मेरे पास। तो ये अशार हकीम सनाई के पढ़ते जाते और रोते जाते। तो हज़रत मौलाना अबुल हसन अली मियाँ साहब फरमाते हैं कि मैं सुनता रहा हज़रत के रोने की आवाज़ें और वो अशार, लेकिन जब हज़रत ने ये अशार पढ़ना शुरू किए चे मालिक को ख़िताब करके कहते हैं कि चे बुदे के दोज़ख जीवन पुरशुदे, अल्लाह मियाँ से अर्ज़ करते हैं कि इलाही मेरे वजूद को जितनी बड़ी दोज़ख है उतना बड़ा बना दे, मुझे दोज़ख में डाल दे। दोज़ख मांग रहे हैं अल्लाह से, दोज़ख की तलब कि दोज़ख मांग रहे हैं कि मुझे दोज़ख में डाल दे तुझे, चूँकि तूने कसम खाई है लअम लअन्न जहन्नम के, खुदा कहता है कि मैं जहन्नम को जो मैंने बनाई है ज़रूर भरूँगा। लअम लअन्न जहन्नम मिन अल-जिन्नति वन्नास अजमईन। तो अर्ज़ करते हैं कि तुझे भरना है इसको तो मेरा वजूद इतना बड़ा कर दे कि तू उसी से भर दे। क्यों? चे बुदे के दोज़ख ज़िमन पुरशुदे मगर दी गरारा रिहाई शुदे, कि दूसरे इंसान जो दोज़ख में जाने वाले हैं वो बख्शे जाएं, उन्हें तो जन्नत में भेज दे और मुझे तन्हा को भेज दे। तो हज़रत मौलाना अली मियाँ साहब फरमाते हैं कि मैं सुन नहीं सका, एक मर्तबा ये शेर सुना और मैं रोते हुए भागा चिल्लाते हुए वहाँ से। तो जब हज़रत के साथ ये बदतमीज़ी की गई, खैर मैंने तो शुरू किया था कि ये जो हज़रत मौलाना अभी करीब में पाकिस्तानी टीवी पर कोई प्रोग्राम दिखाया गया कि जिसमें हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने उस वक्त रोका था कि भाई मुल्क तकसीम ना करो, तकसीम हो जाएगा तो जो टुकड़ा पाकिस्तान के नाम से तुम बनाओगे उसमें ये होगा ये होगा ये होगा। तो वो बेचारा वो समझाने की कोशिश कर रहा है अभी कि देखो कि जितनी चीज़ें उन्होंने कही थी कि ये होगा वो सब चीज़ें हो गई, कोई 50 चीज़ें गिनवाई कि ये उन्होंने फरमाया था वो भी हो गया ये भी हो गया। कहते हैं अब खुदारा उसको रोको कि आगे जो उन्होंने कहा है वो ना होने पाए, अपने आप को बदलो, वहाँ की पब्लिक को समझाने की कोशिश कर रहे थे। तो हज़रत ने जो उनसे कहा था कि ये मुल्क हमारा है, कि जब शक्कुल कमर का मौजज़ा हुआ तो राजा भोज जो गुजरात में राजा थे बादशाह थे उन्होंने वो मौजज़ा देखा और फिर बाद में इत्तला आई कि भई ये किसने, तो एक हुकूमत थी, तो उन्होंने चारों तरफ मुल्कों में अपने आदमी दौड़ाए होंगे, उन्होंने आकर इत्तला दी कि ये मक्के में अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मौजज़ा तलब किया गया। उन्होंने एक इशारा फरमाया, चाँद के दो टुकड़े हुए, चुनाचे उन्होंने अपने आदमी भेजे, खुद मुसलमान हुए। इसीलिए उनकी तरफ वहाँ वालों ने जिन्होंने उनके इस मज़हब को तस्लीम नहीं किया जदीद मज़हब समझ करके, तो उस वक्त से लेकर आखिर तक आज तक जो कोई बात करे तो उसको झुटलाना हो, ठुकराना हो, न मानना हो, तो क्या कहते हैं, ये तो राजा भोज जैसी बात करे। तो उनकी बातों का वज़न कम करने के लिए, नफ़रत दिलाने के लिए ये जुमला उस ज़माने से चला हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे बुज़ुर्गों से हमें वाबस्ता रखे, जितना इनका दामन छूटेगा कि हम हलाकत में पड़ेंगे। अल्लाह ताला इन हुफाज़ को कबूल फरमाए। जिस तरह हमारे अकाबिर सारी सारी रात पढ़ते थे, तो उस मैंने अर्ज़ किया कि उस वक्त जो क़यामत थी जिसमें पूरा पंजाब खाली हो गया, अब ये दिल्ली की बारी थी, ये सैलाब यहाँ तक आने वाला था हिजरत का, तो उसको रोका है। तो लिखा है, हमें बताया गया, वहाँ जो हज़रत शेख क़ुद्दस रूह की खिदमत में रहते थे तकसीम के वक्त में, उन्होंने बताया कि हज़रत शेख नबरल्लाहु मरकज़हु सारी सारी रात इशा से लेकर फजर तक मालिक के सामने खड़े रोते रहते थे, कुरान पढ़ते जा रहे हैं रो रहे हैं। और उन्होंने शेख इनाम ने हमें बताया कि जिस तरह हाथी का पैर होता है, वो हज़रत शेख क़ुद्दस रूह के पैर मुबारक वरम करके इतने एक सुतून की तरह गोल गोल हो गए थे, और किस तरह हज़रत ने कितनी रातें इसी तरह गुजारी, इस वरम आ गया फिर भी अपनी ज़ात पर कोई तरस नहीं खाया, उन्होंने खड़े रहे। अल्लाह ताला हमारे हुफाज़ को भी रात दिन कुरान करीम की तिलावत की तौफीक अता फरमाए, और सबसे ज़्यादा कुरान करीम का जो हक अदा करना है हाफिज को, वो क़याम में, नमाज में। जैसे हज़रत शेख क़ुद्दस रूह का सारी उम्र का मामूल रहा कि कम अज़ कम रोज़ 10 पारे की तिलावत हज़रत फरमाते, और वह 10 पारे की तिलावत सारी की सारी होती नमाज़ों में। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबीना व शफीना व हबीबिना व सनदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम। सल्लल्लाहु अला खैर खल्क़िही सय्यिदना व नबीना मुहम्मदिन। तो उन्होंने जो हदिया भेजा था, अपने बेटे को भेजा राजा भोज ने, तो हदाया में उसके साथ पान भी था, तो पान भेजा, और उन्होंने जो मुसाहिब थे मजलिस के, उन्होंने कहा कि वो पान के लवाजमात भी साथ रखे थे, तो उन्होंने कहा कि उनको क्या पता होगा अरब में के पान में किस तरह इसको खाया जाता है, अगर चूना ज़्यादा लगा दिया तकलीफ़ होगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे यकीन है कि वो अल्लाह के सच्चे नबी हैं, तो उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं, खुद पता चल जाएगा, पान खुद बोलेगा, वो चीज़ें खुद बोलेंगी। जिस तरह वो बूटी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बूटी मुँह में रखी और बोटी कहने लगी ला ताकुल नहीं या रसूल अल्लाह, तो कहते हैं, तो यह किस्सा मैंने मौलाना हज़रत मुफ्ती तकी साहब को सुनाया कि अखबार में भी आया था, तो फरमाया कि मुझे उसकी कॉपी भेज देना, चुनाचे गुजराती मैगज़ीन का फ़ोटो लेकर मैंने उस वक्त उनको भेजा था।
جی. Inshallah, now we'll call upon the Hufaz-e-Kiram to receive the certificate, inshallah.